ईशानी को कैसे भी करके रुद्राक्ष से बात करनी थी, पर माया उसे जाने से रोक रही थी। गुस्से में ईशानी ने माया को धकेल दिया था। ईशानी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा था, पर उसने एक नज़र ये देख लिया था कि माया को गिरने से पहले ही दिव्या ने संभाल लिया था। ईशानी जब ऊपर रुद्राक्ष के पास पहुंची, तभी नीचे से दिव्या का कॉल आया और उन्होंने माया के चोट लगने की बात कही। गुस्से में रुद्राक्ष ईशानी को लेकर नीचे पहुंचा और उन्होंने माया को दर्द में देखा तो वो उसे वापस ऊपर ले गया। खुराना फैमिली को यही लग रहा था कि आज ईशानी की उस गुस्ताखी के लिए रुद्राक्ष उसकी जान ले लेगा। वही रुद्राक्ष ईशानी को ऊपर लेकर आया तो ईशानी अपनी सफाई पेश करते हुए सुबकते हुए बोली, मेरा यकीन कीजिए रुद्राक्ष, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था। हाँ, मैंने गुस्से में उन्हें धक्का जरूर दिया था, पर आपकी स्टेप मॉम ने उन्हें संभाल लिया था। जैसे ही मैं ऊपर पहुंची, उन्हें चोट कैसे लग गई, आई रियली डोंट नो। अपनी सफाई पेश करते हुए ईशानी की आंखों में आंसू आ गए थे। वैसे भी वो रुद्राक्ष के बिना पिछले दो दिनों से ऐसे ही परेशान थी। ईशानी आगे कुछ कहती उससे पहले रुद्राक्ष ने उसे पकड़कर अपने सीने से लगा लिया था। उसने ईशानी को इतना कस के गले लगा रखा था कि हवा तक पास होने की जगह नहीं थी। उसकी इस हरकत पर ईशानी हैरान थी। उसे इसकी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी कि रुद्राक्ष उसे प्यार से गले लगाएगा। उसे तो ये लगा था ना, न जाने आज रुद्राक्ष उसके साथ क्या करेगा। ईशानी आगे कुछ बोलने को हुई, तभी रुद्राक्ष ने प्यार से उसकी पीठ सहलाई तो ईशानी फिर से चुप हो गई। रुद्राक्ष ने धीरे से कहा, मुझे तुम पर यकीन है, तुमने ऐसा नहीं किया है। फिर भी तुम्हें दादी को धक्का नहीं देना चाहिए था, वो उम्र में तुमसे बड़ी है। बोलते हुए रुद्राक्ष ईशानी से अलग हो गया। उसने अपने दोनों हाथों से ईशानी का चेहरा पकड़ रखा था और अपने अंगूठे से उसके आंसू साफ कर रहा था। मैं उनके साथ बदतमीजी नहीं करना चाहती थी, पर मुझे तुमसे बात करनी थी और वो मुझे आने ही नहीं दे रही थी। मैंने उनका कुछ नहीं बिगाड़ा है रुद्र, फिर भी वो मेरे साथ ऐसा क्यों बिहेव करती है? बुरा तो मेरी बहन के साथ भी हुआ है, फिर तुम्हारी फैमिली मुझे क्यों नहीं समझना चाहती? मैं अपनी जिद छोड़ने के लिए तैयार हूँ, तो आप लोग भी अपनी जिद छोड़ दीजिए। और ईशानी रोते हुए बोल रही थी, तभी रुद्राक्ष ने उसके होठों पर उंगली रखकर उसे चुप करते हुए कहा, आगे कुछ नहीं बोलोगी तुम, बताओ मुझे क्या बात करनी थी तुम्हें मुझसे, तुम्हारे सामने खड़ा हूँ मैं। रुद्राक्ष नीचे जितना गुस्से में था, ऊपर ईशानी से उतना ही प्यार और शांति से पेश आ रहा था। ईशानी एक पल के लिए चुप हो गई, उसकी नज़रें झुकी हुई थीं। फिर उसने नज़रें उठाकर रुद्राक्ष की आंखों में देखते हुए कहा, याद आ रही थी आपकी, नीचे नहीं रहना है मुझे। आप जैसे भी हो, एटलीस्ट आपके साथ रहकर ये तो नहीं लगता कि मैं अनजान लोगों के बीच रह रही हूँ। जब से तुमसे मिला हूँ, तब से मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है, फिर भी तुम्हें मेरे साथ कंफर्टेबल फील होता है, इट्स रियली सरप्राइजिंग, रुद्राक्ष ने भौहें उठाकर पूछा। ईशानी ने बिना कुछ कहे हाँ में सिर हिला दिया। एक बार फिर उनके बीच एक अजीब सी चुप्पी छा गई, जिसमें दोनों ही कुछ नहीं बोल रहे थे। अचानक रुद्राक्ष ने ईशानी को अपनी गोद में उठाया और उसे बेडरूम में ले जाने लगा। कहीं ना कहीं ईशानी समझ रही थी कि रुद्राक्ष क्या करने जा रहा है, फिर भी उसने उसे नहीं रोका। शायद उसे भी फिलहाल रुद्राक्ष के पास रहना था। रुद्राक्ष ने ईशानी को बेड पर लेटाया और अगले ही पल वो उसके ऊपर था। रुद्राक्ष ने कुछ नहीं कहा और वो काफी सॉफ्टली ईशानी के होठों पर किस कर रहा था। लगभग 5 मिनट किस करने के बाद रुद्राक्ष उसके ऊपर से उठने लगा। तभी ईशानी ने उसका हाथ पकड़कर उसे फिर से अपने करीब खींचते हुए कहा, तो आप भी मुझे मिस कर रहे थे? अगर ऐसा है तो मुझसे दूर क्यों रह रहे हो आप? आपने कहा था कि आपको मेरे टच से भी नफरत है और इसका रीजन भी मुझे पता चल गया था। अब ऐसा क्या बदल गया जो आप मेरे करीब आना चाह रहे हो? मुझे कुछ मत पूछो, क्योंकि मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा। तुम्हें मेरी याद आ रही थी, बात करनी थी, सो बात हो गई, और मैंने तुमसे काफी प्यार से भी बात की, किस किया, हग किया, अब तुम्हें मेरी याद नहीं आएगी। जाओ नीचे जाकर आराम करो, अब जिद छोड़ो और खाना खा लेना, रुद्राक्ष ने ईशानी के ऊपर से उठते हुए जवाब दिया। रुद्राक्ष खड़े होकर बाहर की तरफ जा रहा था, तभी ईशानी जल्दी से उठकर आई और उसे पीछे से हग कर लिया। ईशानी रुद्राक्ष की पीठ पर अपना सिर रखकर बोली, करीब रहना है मुझे आपके, बर्बाद हो जाओगी वाइफी मेरे आकर, रुद्राक्ष बिना किसी भाव के बोला। ये तो आपको पहले सोचना चाहिए था, वैसे भी आपने मुझे बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है रुद्र, ईशानी ने जवाब दिया। एक बार फिर सोच लो, डिवोर्स पेपर पर साइन हो गए हैं और मैं उसे नहीं बदल पाऊंगा। मैं किसी भी कीमत पर ये घर और खुराना फैमिली को नहीं छोड़ सकता हूँ, फिर चाहे बात तुम्हारी ही क्यों ना हो, रुद्राक्ष ने ईशानी की तरफ पलटकर जवाब दिया। ईशानी को अभी भी हैरानी हो रही थी कि रुद्राक्ष अपनी फैमिली का सच जानते हुए भी उन्हें छोड़ना क्यों नहीं चाहता था। ऊपर से उसकी मॉम के साथ भी उन लोगों ने बहुत बुरा किया था, फिर भी रुद्राक्ष अपनी माँ के बजाय उसे फैमिली का साथ दे रहा था। ईशानी इस बारे में कुछ पूछते उससे पहले रुद्राक्ष बोला, ऐसा कुछ मत पूछना जिसका जवाब मैं ना दे पाऊँ, नीचे चली जाओ ईशानी, इससे पहले कि मेरा खुद पर कंट्रोल ना रहे। हाँ, मैं भी तुम्हें मिस कर रहा था, इस वक्त मुझे भी तुम्हारे साथ रहना है, तुम्हारे करीब आना है, पर आई कैन हैंडल माई सेल्फ, तुम नीचे, रुद्राक्ष बोल रहा था तभी ईशानी ने आगे बढ़कर उसके होठों को कैप्चर कर लिया और उसे बोलने का मौका तक नहीं दिया। रुद्राक्ष को किस करते हुए ईशानी उसे पकड़कर बेड के पास लेकर चली आई। फिर रुद्राक्ष को जिसका डर था वही हुआ, वो ईशानी से दूर रहने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इस वक्त दोनों के बीच में दूरी जैसा तो कुछ नहीं था, था तो सिर्फ प्यार। ईशानी को ऊपर गए हुए 2 घंटे बीतने को आए थे, लेकिन ना तो रुद्राक्ष नीचे आया था और ना ही ईशानी। माया यही सोच रही थी कि ईशानी की उस गलती पर रुद्राक्ष उसे क्या सजा देगा, लेकिन अब तक ईशानी नीचे तक नहीं आई थी। दिव्या भी वहां उसके कमरे में चहलकदमी करते हुए ईशानी के आने का इंतजार कर रही थी। दिव्या को इस तरह टहलते देखकर माया ने सख्त आवाज में कहा, नीचे बैठ जाओ दिव्या, तुम्हें देखकर हमें चक्कर आने लगे हैं। चक्कर तो मुझे आ रहे हैं मम्मी जी, पता नहीं दोनों के बीच ऊपर क्या हो रहा होगा, कहीं ऐसा तो नहीं रुद्राक्ष उसे सजा देने के बजाय कुछ और ही कर रहा हो। वो लड़की खूबसूरत है, ऊपर से जानती है ना लड़के कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, उनकी फितरत ही ऐसी होती है कि, दिव्या बोल रही थी तभी माया ने उसकी बात बीच में काटकर चिल्लाते हुए कहा, हम बोल रहे हैं तुम चुप हो जाओ, बेटा है वो तुम्हारा और तुम उसके बारे में क्या उल्टा सीधा सोच रही हो। वैसे भी हमारा रुद्राक्ष ऐसा नहीं है, इसका जीता जागता सबूत संजना मित्तल है, कभी उसने अपनी हदें पार नहीं की है। उनकी शादी नहीं हुई थी मम्मी जी, और रुद्राक्ष की ईशानी से शादी हो चुकी है। देखा जाए तो रुद्राक्ष की ईशानी के साथ कुछ करता है तो वो गलत नहीं, क्योंकि वो उसकी पत्नी है, दिव्या ने जवाब दिया। दिव्या की बातें माया को गुस्सा दिला रही थी, वो उस पर चिल्लाकर बोली, हम कह रहे हैं अभी के अभी हमारे कमरे से बाहर चली जाओ, इससे पहले कि हम कुछ फेंक कर तुम्हारा सिर फोड़ दें। वो लड़की नीचे इस वजह से नहीं आ रही होगी क्योंकि चलने की हालत में भी नहीं छोड़ा होगा हमारे रुद्राक्ष ने उसे, देखना वो खुद उसे नीचे छोड़कर जाएगा। दिव्या ने आगे कुछ नहीं कहा और कमरे से बाहर आ गई। वो जानती थी कि अगर माया की मर्जी के खिलाफ वो उसके कमरे में रुकी तो जो माया ने कहा वो सच में कर देगी, वो गुस्से में उसका सिर सच में फोड़ देगी, वो गुस्से में उसका सिर सच में फोड़ देगी।
दिव्या कमरे के बाहर बड़बड़ाती हुई आ रही थी, अब कौन समझाए इन्हें। रुद्राक्ष की आंखों में उसके इमोशन साफ नजर आते हैं, वो उस लड़की की तरफ नजरें मिलाकर देख तक नहीं रहा था। बहुत कुछ बदल गया है मम्मी जी इस 1.5 महीने में, मुझे तो पहले भी कभी रुद्राक्ष की आंखों में उस लड़की के लिए नफरत नजर नहीं आई। उसे उस लड़की के साथ रहना है तो बेशक रहे, लेकिन उन दोनों की वजह से मेरी आलिया पर कोई आंच भी आई तो मैं छोड़ूंगी नहीं उन्हें। दिव्या अपने कमरे में आ गई, वहीं रुद्राक्ष और ईशानी ऊपर अपने बेडरूम में एक दूसरे की बाहों में थे और उनके कपड़े फ्लोर पर बिखरे हुए थे। उन्होंने ब्लैंकेट से खुद को कवर कर रखा था। दोनों के बीच एक अजीब चुप्पी छाई हुई थी। अचानक ईशानी ने कहा, मैं नीचे नहीं जाऊंगी, मैंने तुम्हें पहले कहा था मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रखने वाला, बच्चों की तरह जिद मत करो और चुपचाप कपड़े पहन के नीचे जाओ, रुद्राक्ष ने सख्त आवाज में कहा। मैंने कह दिया ना मुझे आपके साथ रहना है, आपकी फैमिली बहुत बुरी है, ईशानी ने बिना सोचे समझे कहा। रुद्राक्ष ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया तो ईशानी चिढ़कर बोली, पता है मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा आप पर तब आता है जब आपको सारा सच पता है कि आपकी फैमिली कैसी है, फिर भी आप उनका फेवर करते हो। उसकी बातें सुनकर रुद्राक्ष के चेहरे पर हल्की स्माइल आ गई, लेकिन ईशानी का चेहरा रुद्राक्ष के सीने पर था तो वो देख नहीं पाई। रुद्राक्ष ने तुरंत खुद को नॉर्मल किया और फिर खुद को सख्त दिखाते हुए कहा, मैंने उनका कोई फेवर नहीं किया है और ना ही एक शब्द बोला है उनके सपोर्ट में, तुम ही आई थी ऊपर ये बताने के लिए, तुमने कुछ नहीं किया। मैंने एक शब्द भी बोला क्या तुम्हें कि तुम सच बोल रही हो या झूठ? बहुत बुरे हो आप जो न्यूट्रल रहकर सबसे बच जाते हो, आप चाहे जो भी कर लो मैं नीचे नहीं जाऊंगी, ईशानी जिद करते हुए बोली। रुद्राक्ष अच्छे से जानता था कि अगर ईशानी नीचे नहीं गई तो माया उसे लेने के लिए खुद ऊपर आ जाएगी। वो उन दोनों के बीच फंस गया था, माया को रुद्राक्ष कुछ नहीं बोल सकता था और अब ईशानी भी उसकी बात नहीं समझ रही थी। रुद्राक्ष ने गहरी सांस लेकर छोड़ी, उसने ईशानी का चेहरा अपनी तरफ किया और फिर उसके गाल पर हाथ रखकर काफी प्यार से कहा, अच्छा मैं तुम्हें प्रॉमिस करूं कि मैं सबके सोने के बाद तुमसे मिलने के लिए आऊंगा, क्या फिर भी तुम मेरी बात नहीं मानोगी? आप क्यों डर रहे हो उनसे इतना, आप कोई 2 साल के बच्चे थोड़ी ना हो, ईशानी ने बात को टालते हुए कहा। जिद मत करो और मेरी बात का जवाब दो, प्लीज मेरी और अपनी मुसीबतें मत बढ़ाओ, मैं तुम्हें कोई प्रॉमिस नहीं कर रहा क्योंकि लगभग 5 महीने का टाइम बचा है और वो पूरा होते ही हम दोनों अलग हो जाएंगे, चॉइस तुम्हारी है ईशानी, तुम्हें मेरे पास रहना है या नहीं, अब जिद मत करो और जाओ अपने कमरे में, मैं रात को तुमसे मिलने आ जाऊंगा, रुद्राक्ष ने सख्त शब्दों में कहा। ईशानी का गुस्सा बढ़ रहा था, रुद्राक्ष जानबूझकर खुद के लिए कोई स्टैंड नहीं ले रहा था, ऊपर से उससे अलग होने की भी बात कर रहा था। ईशानी ने गुस्से में अपने कपड़े उठाए और पहनकर बाहर जाते हुए बोली, कोई जरूरत नहीं है मेरे पास आने की और ना ही मुझसे मिलने की, 5 महीने बाद अलग होना है तो कोई इमोशन भी मत जोड़ना मेरे साथ, सही कहा आपने अब हमारा दूर रहना ही सही है। रुद्राक्ष की बातों से ईशानी नाराज हो चुकी थी पर रुद्राक्ष ने उसे रोका भी नहीं, वो गुस्से में वहां से चली गई जबकि रुद्राक्ष सिर पकड़कर वहां बैठा था।